हमारे मन से खूब भीषण त्रास, इसीलिए मैं कहती हूँ कि मेरा हृदय कांपता है, मुझे डर लगता है। इसलिए हे संसारी, खबरदार मत जाना कहाँ वृंदावन में, और उसका खबरदार दर्शन मत करना, मुझे डर लगता है। तुम्हारा हो जाएगा सर्वनाश, क्या सर्वनाश हो जाएगा, फिर तुम नहीं लौटेगी, और नहीं लौट के इसे संसार क्या क्या देता हूँ। और युवकों को भी कह रहे खबरदार तुम लोग मत जाना, नहीं तो फिर ज्योति अपनी स्त्री से, माता से, भाई से, बंधु से, किसी से भी स्नेह नहीं रह जाएगा, तुम्हारा सर्वनाश हो जाएगा, इसलिए खबर मत जाओ। यदि बंधु के साथ में रह करके रंग पूर्वक संसार में जीवित रहना है, मत जाओ खबरदार। इसलिए यहाँ पर गोपियां कह रही है जत गोत्रम दृढ़ेगा कुलकानन विभ्रण, यदि इन मृगों को, इन पक्षियों को, इन गायों की और इन पेड़ों की, यदि वृक्षों की ये दशा हो जाती है, उनका धर्म विपरीत हो जाता है, जड़ चेतन और चेतन जड़ हो जाता है, ताकि धर्म विपरीत हो जाए, जड़ चेतन, चेतन जड़ हो जाए, तले अमरा सरल स्वभाव, कोमल स्वभावा, ऐसे सुंदर रूप, ऐसा मधुर कोनो शब्द सुनने हमारे चित्त विगलित हो जाए, अरे हमारे धर्म जी को संचाले कथारी बाकी। अतः यदि दोस्त थाके हमारा घर छेड़े थी, यदि हमारा बंधु बांधव के छेड़े दिए, तुम्हारे निकट ऐसे गलम आप पोती सेवा करी नहीं, ताले ऐसे हमारे दोस्त की, ये हमारे जी अधर्म करना, एक जन्म मूल गायी तुम्हें, एक जन्म तुम्हें अधर्म, তবে একটি কথা, আমরা ঘর ছেড়ে দিয়ে এখানে এসেছি, আমরা অধর্ম করলাম, এটা ঠিক আমরা মেনে নিলাম, পতি পুত্র সত্ত্বকে ছেড়ে দিয়ে মহা অধর্ম, আমরা অবৈধিক কার্য করলাম, কিন্তু আপনার মতন এত শিক্ষা দাতার গুরু পাওয়া যায়, এই বিপদ থেকে আপনি আমাদেরকে রক্ষা করতেন, আপনি আমাদের গুরু থাকুন। কিন্তু শাস্ত্রে লেখা আছে যে গুরু ঠাকুরের আগে পূজা করে দিয়ে তারপরে ভগবান আর অথবা যাহার নিজে পতি পুত্র ইত্যাদি কে পরে সেবা করবে, উঠে সকাল বেলা কি করবে, গুরুদেব কে স্মরণ করবে, গুরুদেবের পূজা করে দিয়ে তারপরে পতি পুত্র বন্ধু বান্ধব সকলকে সৃষ্টি করবে, সব লোকা পিছে করেগা, পহলে হোগা গুরুজি কা। তো আপনার জায়গা ইতনা সুন্দর শিক্ষা দেনে বালা গুরু তো দূসরা কোন, হাম লোগো নে আপকো গুরু কে রূপ মেহি বরণ কর দিয়া, আমরা আপনাকে গুরু রূপে তো বরণ করলাম, অতএব আপনার পূজা আমরা আগে করি আর আপনি এটা গ্রহণ করুন। কৃষ্ণ দেখেন তো বেকায়দা ফেল রয়ে গেছে, কৃষ্ণ সোচা জিনে হমকো
বাত মে ফসা লিয়া,
মানে এসা বাঁধ লিয়ে আজ অব হম ক্যা কহে, কুছ সোচনে লগে যে কুছ কহে, ইতনে মে ফির গোপিয়া কা সিনহা, আচ্ছা তো দেখিয়ে গীতা মে আপনি ইয়ে আপ তো কহতে হ্যায় কি মানে বড়ি ভগবান হুঁ, তো আপ ভগবান ভি হ্যায় আর গুরু ভি হ্যায়, তো কহতে হ্যায় কি যে যথাং মাম প্রপদ্যন্তে তাম তথৈব ভজাম্যে, জো জৈসা হমারে প্রতি ভজন করতা হ্যায় সাধন করতা হ্যায়, হমকো জো কুছ মানতা হ্যায় হম ভি উসি উসমে উসি সেবা কা প্রতিদান করতে হ্যায়। তো হমনে আপনা হৃদয় সব আপকে চরণ মে সমর্পণ কর দিয়া হ্যায়, তো আপ ভি হমারে প্রতি আপনা হৃদয় সমর্পণ কর দিজিয়ে, আর নহীঁ করতে হ্যায় তো ইয়ে ধর্ম উল্লঙ্ঘন কা দোষ আপকে উপর হো, যে গুরু বতলা রহে হ্যায়, যদি গুরু হি কো কাম না করেন আর দূসরো কো শিক্ষা দেতে হ্যায় তো ফির গুরু কৈসা রহে, ইসলিয়ে যদি কোই প্রত্যবা ইয়া পাপ হুয়া তো আপকো হোগা, যদি হমকো নহীঁ গ্রহণ করতে হ্যায়, ইসলিয়ে আপ আপনি বাতো কি রক্ষা কে লিয়ে হমে স্বীকার কিজিয়ে। দূসরি বাত, সব ধর্মান প্রত্যজ্যমান একম শরণম ব্রজ অহম ত্বাম সর্ব পাপেভ্যো মুক্তয়িষ্যামি মা সীতা। আপনি গীতা মে ইয়ে ভি লিখা, যে সমস্ত ধর্ম কো ছোড় করকে কৃষ্ণ কে চরণো মে আত্মসমর্পণ কর দেতা হ্যায়, উসকে সমস্ত জিতনে পাপ হ্যায় উনসে মে ছুটকারা দে দেতা হ্যায়, তো হম আপনে পতিও কো পুত্র কো আর সবকো ছোড় করকে আই হ্যায়, হমসে কোই পাপী জগত মে নহীঁ হ্যায়, ইয়ে বাত ঠিক হমনে মান লিয়া, যে হমসে কোই পাপী, হম সবসে অধিক পাপী নহীঁ হ্যায়, কিন্তু আপকা হম আব শরণ গ্রহণ কর রহে হ্যায়, তো উন পাপো সে তো আপ হমে জরুরি ছুটকারা দে দেন, হমকো ইয়ে পূর্ণ বিশ্বাস হ্যায় যে দেউ ছুটকারা, আমাদের পূর্ণ বিশ্বাস যে আমরা সব কুছ ছেড়ে দিয়ে আপনার চরণেতে যদি প্রণত হই, যত পাপী হই না কেন ওই পাপ থেকে আপনি নিশ্চিত ছুটকারা দিয়ে দিবেন, অতএব আমাদের কোনো চিন্তা নেই, অতএব এখন আপনার কর্তব্য হচ্ছে আমাদেরকে গ্রহণ করা, আমরা যেরকম আপনার উপাসনা করছি, ইসরে সে ইয়ে বতলা রহে হ্যায় যে কৃষ্ণ কিতনে সুন্দর হ্যায়, ইতনে সুন্দর হ্যায় ইয়ে তো বতলায় হ্যায়, গা রহে কিস জগা হো, প্রসঙ্গ কব কা হ্যায়, প্রসঙ্গ কখন কা, কৃষ্ণচন্দ্র অন্তর ধ্যান রয়েছে, কৃষ্ণচন্দ্র জি অন্তর ধ্যান হয়ে লীলা আশ্রম বর্ণ কর দিয়া, যদুপুর কা ধ্বংস হো গিয়া, কৃষ্ণ নে উদ্ধব জি কো কহা ইহা সে বদ্রীনারায়ণ চলে যা, বীচ মে আপকো বিদুর সে ভেদ হোগি, হমনে আপকো যে তত্ত্ব বতলায়া হ্যায় উদ্ধব সন্দেশ উদ্ধব সম্বাদ, ইসমে সমস্ত ধর্ম কি বাতে বতলাই হ্যায় হমনে, সমস্ত ধর্মের কথা বলেছি, এই সব বাতে বিদুর কো শুনানা, আর ইসকে বাদ মে তুম বদ্রী কাশ্রম মে চলা জানা, ওহাঁ পর বিদুর আপসে মিলে, वहां पर आपकी मनोकामना भी सिद्ध होगी, और उनके लिए सब बातों को भी बतलाया, ये कथा से कृष्ण अंतर ध्यान हो गए, ये बिरह रस में डूब गए और उनका आदेश पालन करते हुए वहां से चले, जब वहां से चले बिरह में हृदय धरा पड़ा, इसी कुरु जंगल देश में कहीं अतः यमुना के किनारे उनकी विदुर से भेंट हुई, अब विदुर से भेद होने पर विदुर ने कुशल संवाद पूछा, जो जदुकुल का संवाद क्या है, कृष्ण कुशल से हैं, बलदेव जी कुशल से हैं, रोहिणी मैया और सब लोग ब्रजवास वहां के जितने लोग हैं सब कुशल से हैं, तो सुनते ही उनको स्मरण हुआ और आंखों से आंखों की धारा गिरने लगी और विलाप करने लगे रोते रोते, ओह कृष्ण जब चले गए तो यहाँ से जितना पृथ्वी का सौभाग्य था, जदुकुल का जो सौभाग्य था, वो सब अपने साथ लेकर के चले, कुछ बाकी नहीं रहा। हम तो केवल सब रोने के लिए यहाँ पर पड़े हैं। ओह कृष्ण जब आए मथुरा में और वहां से जब ब्रज में गए, ब्रज में लक्ष्मी जी उसकी शोभा को बढ़ाने लगी, कुंजों के रूप में प्रकट हो गई, समस्त सौंदर्य माधुर्य सब वहां पर उपस्थित हो गया। कैसी कैसी सुंदर मनमोहक लीलाएं। और फिर वहां से मथुरा में आए, कंस इत्यादि को मारा, इसके बाद में द्वारका में आए, तरह तरह की लीलाओं को प्रकाश किया। ये कहता कि और रोने लग गए, जितना स्मरण करते हैं उतना रोने लग गए। अंत में वो कहते हैं वो कृष्ण कैसे सुंदर, मानो उन्होंने जोग माया के बल को दिखलाने के लिए, जोग माया के बल से अपने ऐसे सुंदर रूप को प्रकट किया जिसको देख करके और लोगों की तो बात क्या, स्वयं कृष्ण अपने आप मुग्ध हो गए, जब मैं इतना सुंदर हूं नहीं। अर्थात जोग माया प्रभावित है, एमन त्रिलोक थी कैसे अतंत सुंदर रूप तार सुना रूप में एरकम रूप कैसे जोग माया द्वारा प्रकटित करे थी। किसे जन्म यही मत लीला उपयोगी, ये समस्त लीला चरित्र हो गए, उसी को ये बतला है। जन्मस्तलीलोपैकम् स्वजोग मायापलम् दर्शयिता गृहीतम् विस्मापनम् स्वस्तक सौभगर्धे परम पदम भूषण भूषणम्। उद्धव रोते हुए कह रहे हैं जन्मस्तलीलोपैकम्, मत लीला के मत लोगों के जो मरणशील लोग हैं, ये पृथ्वी लोग, ये लोग भगवान को छोड़ करके और इतनी सुंदर सर्प लीला भगवान का जिसमें वो डूब रहे थे उसको छोड़कर कहां ये घृणित कर्म मार्ग से उत्पन्न हुए ये काम और ये भोगों के रस में डूबे हुए ये मरणशील ये मनुष्य हैं, भगवान को छोड़ करके इसमें डूब रहे हैं। ऐसे लोगों के फिर अपने लीलाओं के द्वारा आकर्षित करके अपनी लीला रूपी समुद्र में, अमृत समुद्र में निमज्जित कराने के लिए, उन्हें नित्य काल के लिए संसार से निकालने के लिए अपने अत्यंत सुंदर से सुंदर रूप को, जो नारायण और श्री रामचंद्र जी जो परम सुंदर हैं, उनसे भी सुंदर रूप को प्रकट किया। कैसे प्रकट किया? योग माया के बल से। जोग माया की बल की क्या जरूरत है? जोग माया न रहे तो कृष्ण का रूप किनमें सच्चिदानंद हम नहीं देख सकते, उनके रूप को कैसे हम देखते हैं? जोग माया कुछ कृष्ण के साथ में संपर्क जीवों का करा देती है और करा करके रूप को दिखला देती है, नहीं तो कृष्ण का रूप हम नहीं देख सकते। साधारण उपमा के लिए देख लीजिए, ये मेवाड़ का आना, जिनकी पत्नी मीरा जी घर में लगा करके सुंदे, वो क्या कहते हैं अर्गला लगाकर, अभी तक मैं बैठी हुई तन्मय हो रही हूँ, मेरे तो गुरुधर गोपाल दूसरों को थिरक थिरक करके नृत्य कर रही हूँ, मानो कोई वीणा बजा रहा हो, वीणा और बंसी दोनों बज रही है और ये सुख दुख खो करके नाचने में तन्मय है। राणा को सिपाहियों ने खबर दी, हम लोग जो सोचते थे तो वही बात हुई, कोई एक दूसरा व्यक्ति आया है घर में, किसको उसको छिपा लिया है और दोनों मिलकर के नाच गा रहे हैं, अभी चलिए अभी आपको दिखला दें। राणा सुनते ही क्रुद्ध होकर के हाथों में तलवार लेकर और जल्दी से वहां आए, देखा कि सब चीज तो मेरे तो गुरुघर गोपाल हो रहा है, बिना भी बज रही है, बस खोलो खोलो, नहीं खोला तो किया क्या, पैरों से मारा, नहीं पीता तोड़वा दिया दरवाजे, भीतर गया देखा तो वो अकेले तन्मय होकर के हाथ उठा करके एकदम नाच रहे, करीब का तो बोध नहीं, किसके साथ में बातचीत कर रही थी, अभी कहां छिपा दिया, पलंग के नीचे तो इतने छिपा दिया, पलंग के नीचे देखा, इधर देखा उधर देखा, कहीं नहीं, कहाँ रखा बतलाओ, नहीं तो तुम्हें अभी काट डाले। धीरे 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 उनको होश हुआ, कहीं नहीं तो कोई तो नहीं, तो नहीं तू जल्दी बता कहीं है कोई आदमी था, नहीं तो किससे बातचीत करती है, पर यहां से यही तो बैठे हैं, देखो यही तो है हमारा दिल खड़ी है, देखो तो सही से कैसा कर सुंदर, ऐसे झूठ बोलती है, झूठ पागलपन मत कर, तुम ठीक ठीक बतलाओ, हमेशा हमें दिखला देंगे कहां, अच्छा अच्छा ठीक है देख, उसके सिर पर हाथ रख दिया, हाथ पर रखते ही उन्होंने देख लिया, कुछ टच हो गया ना, देखते एकदम देख करके मुक्त हो गया, बस मीरा उसी समय में घर से निकल गई, तो जब एक सेकंड भी इस घर में नहीं रहा, आराना रोते ही उसके चरणों में गिरता हुआ उसके पीछे पीछे आया, वृंदावन तक आया किंतु नहीं लौटी, किंतु दर्शन उसको करा दिया, फिर बहुत कुमार महाराज हुआ, किंतु अब तो बात खत्म हो गई थी, घर को छोड़ करके वो चल पड़ा, फिर लौटी नहीं। उसी प्रकार से आप लोगों ने सुना होगा दक्षिण में रामानुजाचार्य का एक शिष्य था, तो वो शिष्य होने के पहले बड़े सुंदर विषय भोगी कामी था, जाति में शूद्र था और लंबा चौड़ा पहलवान था, गुंडों का सरदार था, 20-25 गुंडे उसके सब समय साथ में, डर के मारे कोई भी चू नहीं कर सकता था, डर मारे भय जीते थे ओके क्यों कुछ बोलते ना, और एक बेचा के उसने प्रेम कर लिया, किंतु बेचा कुछ भगवत भक्ति जुटते थी, तो उसने एक दिन बेचा ने कहा कि मैं रंग जी का दर्शन करने के लिए चलूं, यह बात दक्षिण देश में वो रंग श्रीरंगम की बात चंदा में कथा, बेचा बोलो ये अमी आज से जाबो दर्शन करते चले अमी चल दो, मैं भी चलूंगा, हम जहां जाती है उसका छोड़ता नहीं, छाया की भांति उसके साथ न रहता, उसको कोई लज्जा उज्जा कुछ नहीं, बेहाया एकदम बेशर्मा, कोई क्या कहता उसके लिए, कोई अफवाह देते हो तो मार डालेगा, इसलिए सब लोग रास्ता छोड़ करके हट जाते। तो जब चलने लगी तो ये उसके आगे हो गया और उसका मुख भी हाथा हुआ चल रहा है, पीछे 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 से चलता है, वो सामने से चल रही है और पीछे से पीछे होकर के उसका मुख देखता हुआ पीछे पीछे चल रहा है, कैसा बिहार, चलते चलते मंदिर में आया, मंदिर में वो साधु जी का पट खोलने वाला है, तो वो ठीक दरवाजे के पास में आकर के खड़ी हो गई दर्शन करने के लिए, और ये बदमाश ठाकुर जी की तरफ में ठीक खड़ा होकर के उसी का मुख देखने लग गया, सब लोग तैयार हैं उसका ठाकुर जी का दर्शन करना, और उसका डर से मारे लोगों ने मंदिर खोला नहीं, पुजारियों ने, ये तो किसी घर में किए गए है, ये तो अपराध हो जाएगा, नहीं सुन, रामानुज को खबर दी गई, रामानुज जी अच्छा चलो मैं चलता, रामानुज वहां पर आए, रामानुज से कहा अरे भद्र लोग, अरे भद्र लोग, तुम इसके एटीके दलाओ ना, मंदिर ऐसा खुला जाएगा, मंदिर खुला जाएगा इधर आओ और इधर से खो करके ठाकुर जी की तरफ में मुख करो, उसने कहा जी आपके जैसा और कोई दुर्भागा है, ठाकुर जी कहां है, इनका क्या रूप है, अरे तुम्हारा रूप सार्थक हो जाएगा जो उनको छोड़ करके इसके तरफ एक बार देखो, फिर उनको देखने की तुम्हारी इच्छा नहीं हो रही, जरा देखो तो कैसा सुंदर इसका मुख कमल है, रामायण जी ने कहा इसके करोड़ों गुण सुंदर वो ठाकुर जी का रूप है, तो कभी हो नहीं सकता, जब तक तुम नहीं देखा तब तक वो पत्थर की मूर्ति को तुमने बड़ा सुंदर बना रखा है, इधर देखो, रामायण जी ने कहा जैसे अच्छा एक बात करो, मैं कहता हूं यदि एक बार तुम उनको दर्शन कर दिया तो फिर इसके मुंह की तरफ मैं कभी जीवन में नहीं देखेगा, कहते मुझको इस पर तुम्हारे बातों को विश्वास नहीं, तुम लोग झूठ बोलते हो, अच्छा चले तो देखो, अच्छा तुम इधर आओ, तुम्हारी बात का विश्वास कर तुमको दर्शन करा दूंगा, इधर आ जाओ, कुछ शक्ति भी थी हम लोगों जैसा नहीं, कृपा करूं कृपा करूं कृपा कीजिए कृपा कीजिए, अरे साधारण आदमी कृपा करेगा क्या? हाँ उत्तम अधिकारी है और कहेंगे तुमको प्रेमा भक्ति हो जाए तो हो जाएगी। किसी को कोई अभिसंपात देंगे नारद जी जैसा, वृक्ष हो जाओ तो वृक्ष हो जाएगा। मध्यम अधिकारी कृपा केवल इतना ही करता है, यह रास्ता दिखला देगा। ऐसे भजन करो, ऐसे हरि नाम करो, ऐसे हरि कथा सुनो, ऐसे वैष्णव का संग करो, ये तो ये बतला देंगे। किंतु चलेगा कौन? साधक चलेगा। बस यही चकिन की कृपा है। बुरी चीज क्या है, अच्छी चीज क्या है, ये बतला देंगे। उसको हरि कथा के माध्यम से ऊपर ले जाने की चेष्टा करेंगे। और जो कनिष्ठ अधिकारी है वो कहेंगे उनकी कृपा क्या है, भाई मैं तो कुछ जानता नहीं, हमारे गुरु जी हैं या ऐसे वैष्णव वहां है, रसिक वैष्णव सत्तक है, वहां पर चलो, वहां पर हम लोग कथा सुनेंगे, तुम्हारा भी कल्याण, ये उनकी कृपा है। इन तीनों ही वैष्णव के साधक लोग ऋणी होते हैं। किंतु क्रमानुसार रामानुज जी कैसे थे, उत्तम भागवतों में थे, वो जिसको जो कहा जाए वही हो जाए, भगवत दर्शन भी करा सकते हैं। इसलिए रामानुज के कहने से आप कुछ ऐसी बात की जिससे कि उसकी मति पलट गई और वहां से हट करके खड़ा हो गया साधु जी के तरफ, तभी सामने उसको रखा पास में। रामानुज ने कहा जैसे ऐसा दरवाजा खोलो पुजारी, बस भीतर में जाकर के साधु जी का आत्मन इत्यादि दे करके और उनको पट खोलते ही सभी लोगों ने जय जयकार किया, बोलो रंगनाथ की जय। दर्शन खुल गया, दर्शन करने लगे सब, उसकी स्त्री भी जो वेश्या थी वो भी दर्शन करने लगी, सब लोग ये कहते कि ये क्या, ये पत्थर की मूर्ति, किसी को आप कह रहे थे मुझको तो ये पत्थर दिखता है, पत्थर दिखता है क्या? सब बस रामानु जाकर के उससे सिर पर हाथ रखा, हाथ रखते देखते ही कांपने लग गया और ऐसी उसकी नजर मिली, नजर उसकी अब बंद ही नहीं हो, फर्क नहीं पड़े और देखते देखते कांपते कांपते निश्चित होकर के रामायण ने फिर उसको उठाया, देखा बस उनके चरणों में लिपट गया, प्रभु अब मैं घर नहीं जाता, संसार से हमें किसी की जरूरत नहीं, वेश्या की बात एकदम सदा के लिए भूल गया, कहे आप मुझे दीक्षा आप दीजिए और आप ही के चरणों की आशा में सारा जीवन बिताऊंगा, बस उनका सदा के लिए उनका बन गया। उन्होंने उसकी दीक्षा ली और उनकी सेवा कर और भूल गया उसको। ऐसे ही ऐसे मत्स्य लीला के उपयोगी, मत्स्य जीवों के लिए उपयोगी, अत्यंत सुंदर सच्चिदानंद रूप कैसा गोकुलेभ्याजमान, गोकुल की गलियों गलियों में अत्यंत सुशोभित हो रहे हैं, कानों में कुंडल झूल रहे हैं, अठरों पर बंसी भी राजित है, सिर पर मोर मुकुट उसका, मैया ने गुंजा माला पहना दी है, तीली काक्षिणी है पहन लिया है, अद्भुत ऐसा सुंदर रूप जगत ने प्रकट किया। किस लिए? बद्ध जी उनका दर्शन करके, उनकी लीलाओं को सुन करके भगवान के तरफ मुड़ जाए और सदा के लिए परमानंदित होकर उनके धाम में पहुंच जाए। माया कलम दर्शिका ग्रहीतम, इसलिए ऐसे को जगत ने प्रकट किया, ऐसा विस्मापनम स्वस्थ से सौभगत से अपने भी मोहित हो जाए। यही चैतन्य महाप्रभु जी के प्रकट होने का कारण है। कृष्ण कभी गोकुल में नंद भवन में बचपन में मैया ने मक्खन दे दिया हाथ में, माँ कहा के माखन दिए, चोटी बांध दिया, छोटी सी मुरली भी लगा दिया, सजा सजा करके मोर मुकुट भी पहना दिया, कुंजा की माला इत्यादि भी पहना दिया, बना करके गभी मंथन में लग गई पास में। और कृष्ण बड़े आनंदित होकर के एक मणि स्तंभ को, फट स्तंभ एक खंभे को जिसमें दर्पण के समान वो चमक रहा है और उसको अपने बाएं हाथ से पकड़ लिया और बाएं हाथ से पकड़ करके घूमने लगे, घुमौरी खेलने लग गए, मक्खन रखे हैं, मक्खन हाथ में लेकर के और घूम रहे खेल रहे हैं, इतने में उनकी छाया दिख पड़ी मंदिर पूछ के खंभ में देख करके पूछा कि ये लड़का कहाँ से आ गया। अब तक तो इस लड़के को हमने कभी देखा नहीं, बड़ा सुंदर है, सलोना है, सांवला है, मानो अपने को भी कभी देखा नहीं। वाह, ये तो हमारे समान ही ये है, मोर मुकुट इसको भी है, हाथ में बंसी भी है, और ये तो हाथ में मक्खन भी दिए हुए है, और हम जैसे घूम रहे ऐसे ये भी घूम रहा है। तो कृष्णा जी इसको सखा बना लेना चाहिए। कैसे सखा बनाए, यदि इसको हम मक्खन खिला दे तो फिर मित्र हमारा बन जाएगा, कभी नहीं छोड़े। ऐसा सोच करके मक्खन उसको देने लग गया, तो वो छाया भी मक्खन देने लग गया। जैसे ये तो देता नहीं है, बंदर घुड़की दी, बंदर घुड़की माने बंदर मत घुड़की ऐसे कर, तो वो भी ऐसे किया, तो उन्हें हाथ उठाया तो उसने भी हाथ उठाया। जैसे जैसे वो करते हैं तैसे तैसे वो भी पोज करने लगा। इतने मैया ने देखा, दधिमंथन छोड़ दिया और कृष्ण की बाल सफलता देखने लग गई, वहां से प्रसंग मुस्कुरा दिया। कृष्ण ने मैया की तरफ देखा तो वो समझ गया, अरे ये तो मेरी छाया है, बस घट दौड़ करके मैया की गोदी में मैया ने अंतर से छिपा दिया। वही कहते हैं विस्मातन, इसलिए उनकी इच्छा हुई, ओहो संसार में मेरे समान और कोई सुंदर नहीं है, और इस रूप को समस्त संसार के लोग देख करके आकर्षित होते हैं। अच्छा, इन लोगों में सबसे आकर्षित कौन होता है विश्व में, कहां के लोग, ब्रजवासी। अच्छा, ब्रजवासियों में इनके सुंदर रूप को देख करके कौन अधिक मोहित होता है, ब्रज की गोपियां, जैसे कि यशोदा जी। इन लोगों से भी अधिक बढ़ करके सबको किसको आनंद होता है, सुख और तन्मयता होती है, ललिता विशाखा इत्यादि गोपी। और इन सबों में भी कृष्ण को देख करके एकदम जड़वत हो जाए ऐसा कौन है, श्रीमती राधिका जी। इसलिए राधिका जी हमारे इस रूप को देख करके उनको कैसा आनंद होता है, उनको कौन सा सुख होता है, ये उनको मालूम नहीं। हमको अपना रूप देख करके आनंद हुआ, किंतु उनको देख करके वो हमसे भी अधिक तन्मय हो जाती हैं, ये कौन सा कैसा रूप। बस काजी इस लीला में नहीं होगा। इसलिए राधा जी का भाव और कांति लेकर के भाव राधिका माधुरी आस्वादन सुखकार जय कृष्ण चैतन्य जय कलि प्रकटे ब्रजराज। वही ब्रजराज कलि काल में चैतन्य महापुरुष के रूप में अवतरित होकर के इन तीन वंशाओं का आस्वादन किया है, और उसी आस्वादन करने से जो जूठा गिर गया उसे त्रिलोकी सब धन्य बन गया। उसका जूठा अब तो नहीं रहा, जूठा का नाम है, उस जूठा का नाम भी जो कोई सुनेगा उनके लीलाओं का वो भी धन्य हो जाएगा, कृतार्थ हो जाएगा। इसलिए कहते हैं परम पद भूषणम भूषण, कैसा भूषणों का भी भूषण उनका रूप है, कोई भूषण नहीं दिया जाए, सब भूषण निकाल लिए जाए और कृष्ण को नंगा खड़ा कर दिया जाए। छोटे से अभी 3-4 वर्ष के हैं तो वो कैसा दिखेगा। एक समय ये बात है वहां की चंद्र सरोवर की, पुजारियों ने कृष्ण के समस्त अलंकार और वस्त्र निकाल दिए। सूरदास को कहा गया आप तो भगवान का रूप वर्णन करते हैं। उनको ये संदेह था कि इनको कोई कह देता है कि आज कैसे कृष्ण को सजाया है, इसलिए ये फिर वैसा वर्णन करके फिर पद लिख देते हैं। अच्छा, आज अभी साथ ही साथ में इनका रूप बदल दिया जाए और देखें कि क्या वर्णन करते हैं। बस साथ ही साथ उनके जो झिंगली और जो कुछ था वो सब निकाल दिया, मोर मुकुट बंसी तंसी सब रख दी और नंगे ठाकुर जी को वहां पर खड़ा कर दिया। गोपाल जी, वो गोपाल हैं, वही गोपाल आजकल हैं वहां नथद्वार, तो उनको खड़ा कर दिया। सुदास जी से कहा जरा आजकल का वर्णन कीजिए, तो सब वो वर्णन करते हैं। भले बने हो नाथ, ओ नाथ आज तो आज भले बन गए, अरे आपके हाथों की बंसी किधर गई, आपका यहाँ मोर का मुकुट जो सिर पर बिराजा था मोर मुकुट कहाँ गया, अरे आपकी वो पहनने वाली वो जो झिंगली थी पीताम्बर था, आपकी पीताम्बर कहाँ जो फहरा रहा था प्रतिदिन वो कहाँ गया, और आज तुम बिल्कुल नंगे, आज अद्भुत आपका रूप है, सब लोग देखकर के चकित हो गए। ये कृष्ण जब कोई काली है, कालिखा, कोई कालिखा यहाँ पर लगा दिया तो बड़े भव्य दिखेंगे कि नहीं, मानो एक टीन का फूल यहाँ पर हो गया, कहीं नाक पर कुछ लग जाए तो नाक पर जैसे सुंदर लोगों का टीन होता है उसके रूप को और बढ़ा देता है। यदि कृष्ण गोचारण करने के लिए जा रहे हूं और चलते 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 गायों के फूल से उठे हुए जो आकाश में धूरी व्याप्त है वो धीरे 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 अलकाओं पर गिर लग गई, मुखमंडल में लग गया, समस्त बदन पर उनका लग गया, तो आप भद्दे से दिखेंगे ही, जल्दी से झाड़ धो दिया जाए तो अच्छे नहीं, मानो आज पाउडर लगा रखा है सुंदर, अद्भुत रूप उनका, और उसमें मधुमत्ता आ जाती है उस रूप को देकर, जैसे वो उनको बना दिया वैसे ही सुंदर लगते हैं। इसलिए भूषणम काली कलुखी एक लड़की को थोड़ी अंधी भी नहीं जाए तो काला चश्मा दे दीजिए, अंधी लड़की रहे और वो एक कांच की कानी है तो उसको क्या कर दो, काला चश्मा लगा दो और सुंदर से सजा दो, सुंदर वस्त्र उसको पहना दो, हाथ में घड़ी खड़ी सब लगा दो, और काली है तो उसको हल्दी इत्यादि लगा करके और उसको सब अच्छी तरह से दो चार दिन स्नान करा दो, विवाह के दिन दुल्हन सजा दो तो वो थोड़ी सी दिखने में अच्छी हो जाती है, और दूसरे तीसरे दिन विवाह इत्यादि के बाद में फिर कैसे हो जाएगी, दांत जब ऊंचा हो और ऐसी हो तो बड़ी शक्ति लग जाएगी, उसको सजाना पड़ता है। किंतु कृष्ण को कोई भूषण नहीं रहे तो भी भूषणों के लिए भूषण हो जाता है, ये कुंडल उनकी शोभा को नहीं बढ़ाता, कृष्ण का अंग की कांति ही भूषण के अर्थात कुंडल इत्यादि के सौंदर्य को बढ़ा देता है, उस समय कुंडल की सौंदर्यता आ जाती है, इसलिए कहते हैं परम पदम भूषण भूषण। इसलिए आपका यह जो रूप है आप ही का दोष है, ये हम लोगों का दोष नहीं है, इतना सुंदर रूप लेकर के नहीं आते तो हमारा भी धर्म नष्ट नहीं होता, आपका भी धर्म नष्ट नहीं होता। इसलिए सनातन गोस्वामी जी कह रहे हैं कि आज गोकुल की गलियों में जो सुशोभित हो रहे हैं, जिनके कर्ण कुंडल इत्यादि उनका मुंह का सब समय चिंतन करते हैं और वो भाग भाग रहे हैं और पीछे से जो सुधा मैया लटकिया लेकर के जो जा रही है, ये इतने सुंदर है जिनके उपमान किसी चीज का सौंदर्य, किसी चीज का महत्व, ए मैन कैन बी नोन बाय हिज कंपनी सोसाइटी। एक आदमी बहुत भला था किंतु आज दुष्ट लोगों के सामने लुटेरे डकैत चोरी व्यभिचारी लोगों के साथ में देखा जाता है, अब उसको हम क्या कहेंगे, तुम्हारा साथी कैसा है, बड़े दुष्ट लोग तो तुम भी दुष्ट होगा, जैसा व्यक्ति रहता है उसी के अनुसार उसका परिकर भी, अर्थात जैसा परिकर होगा तो व्यक्ति भी वैसा ही होगा ना? अब इस परिकर के दृष्टि से कृष्ण का महत्व बोल रहे हैं, कृष्णचंद्र जी वही है, जबकि शिशुपाल का वध कर रहे हैं यहां पर कर्ण दुशासन और ये सब लोग हो, कृष्ण सबका पैर धो रहे हैं बड़े बड़े राजाओं से, तो उस समय परिकर कौन है, पांडव लोग, तो पांडवों के बीच में रहने वाले थे, और एक हमारे द्वारकापुरी में है यहां पर कि उद्धव है, नारद जी हैं, सत्यभामा रुक्मिणी हैं, और वहां पर रुक्मिणी और सत्यभामा के साथ में तरह तरह की बातें चल रही हूं, उद्धव जी भी हूं, तो दोनों में कौन सा परिकर हुआ, कौन सा श्रेष्ठ परिकर है, यहां द्वारका वाला रुक्मिणी सत्यभामा। अच्छा वहां के कृष्ण में और यहां के कृष्ण में श्रेष्ठ कौन है, ब्रज की तो एक ही है किंतु रस की दृष्टि से कौन में सौंदर्य और माधुर्य इत्यादि रहेगा,
ब्रज वाले
वहां वाले द्वारका वाले, और जहां पर कि पांडवों से भी, और जहां पर कि कृष्ण यशोदा मैया के साथ में, सब धर्म की माताएं आ गई हैं और कृष्ण से कहती हैं, बेटा जरा नाच तो, एक गुड़ का लड्डू दे। सब गोपियां ताली बजा रही हैं, कोई कह रहे थे सात सात भीना इत्यादि कहने लगे, कृष्ण को ताली बजाने लगे। बड़ा सुंदर मेरा लाला नाचता है, कैसा देखो देखो ये कैसे ऐसे नाचेगा, बस कृष्ण को ऐसे नचाने। तुमको थोड़ा सा मक्खन देंगे, मट्ठा दे देंगे सिंधु भर, जरा नाचो तो, कृष्ण को उत्साह आ गया। अब अध्यक्ष कृष्ण यहाँ पर हाथ रखा और ऐसा कर रहे थे कान पर आवाज करने लगे और बड़े सुंदर से मंद मंद नृत्य करने लगे। बच्चों का नाचना भी बड़ा सुहाना लगता। एक लड़का हम लोग गए थे तन में, यहाँ पर रख करके इतना सुंदर नृत्य करने लगा, सब लोग देख करके उस चौबे के घर में सब लोग मुहित हो गए। कृष्ण का नाचना देख करके सभी लोग मुक्त हो जाते। तो ये सब नचा रहे हैं। अच्छा वो द्वारका वाला जो रूप है उन रुक्माणी सप्तधामा के अंदर और यहाँ वाला जो गोपियों के बीच में आलाप करते हुए नृत्य कर रहे हैं, गोपियों यहाँ पर सब हैं, ये कौन सा रूप ठीक है? श्रेष्ठ है गोपियों के बीच में, माताओं के बीच में जो उनको नचा रहे हैं। और यहाँ से छोड़ करके चलिए अब रास है, रास में ललिता विशाखा था कि प्राय इत्यादि सब सखियां हैं और कृष्ण वहां पर गोपियां थक गई। कृष्ण ने अपना दुपट्टा पीताम्बर लेकर के उनका मुख से वो पसीने के बूंदे हटा दिए, जरा ऐसे झलने भी लग गए। एक गोपी आज तो मैं थक गई थी, बस पैर दबाने लगे। अब ये कृष्ण का जो वहां पर रूप है और यशोदा मैया के और माताओं के बीच में कौन सा रूप वैशिष्ट है, इसलिए परिकर के श्रेष्ठता से कृष्ण के रूप गुण लीलाओं का भी माधुर्य अधिक हो जाता है। तो यहाँ पर इसीलिए कह रहे हैं आज कि अब परिकरों का वैशिष्ट बतला रहे हैं। जैसा परिकर श्रेष्ठ होगा कृष्ण का सौंदर्य माधुर्य उन्मादकता इत्यादि सब उसी तरह से बढ़ जाएगी। इसलिए कहते हैं तत्व पवित्र भगवान ईश्वरों योगेश्वरांत हृदय कल्पितासन चकाशोपी परिषद गो अर्पित त्रैलोक लक्ष्मी के पदम बपुर तथा। ये प्रसंग बतला रहे हैं रासलीला के बाद जबकि कृष्ण अंतर ध्यान होने के बाद फिर लौट करके उनको दर्शन दिया। करोड़ों गोपियों ने अपने अपने गणों में एक एक आसन की कल्पना की। एक गण में मान लिया कि जैसे 10,000 5,000 या 2,000 या 1,000 महिलाएं हैं, उन्होंने एक आसन बनाया। क्या कौन सा आसन? अपना ये उत्तरीय उतार दिया, उसको भांति कर दिया, चार भांति उसको बिछा दिया। इसके बाद में एक एक गोपी सब अपना अपना उत्तरीय, कहीं कृष्ण को लगे ना कोमल शरीर है इसलिए उसको, दूसरी गोपियों ने ऐसे ही आसन बनाए, तीसरी गोपियों ने इसी प्रकार से लाखों गणों के लाखों आसन बना दिए और कृष्ण ने लाखों धारण करके और लाखों आसनों पर बैठ गए। सभी गोपियां देखने हमारे निकट हैं, कोई गोपी जरा निकट में आकर के उनके हाथों में हाथ ले लिया, कोई गोपी उनके पैरों को पकड़ लिया, कोई गोपी दूसरे हाथ को पकड़ लिया, किसी ने उनके कंधे को पकड़ लिया, कोई जरा दूर खड़ी होकर के उलाहना देने लग गई। ओह प्रेम का तरीका यही है, कोई प्रेम करे और कोई वहां से भग करके चला जाए, ये तो उचित नहीं जाना। कोई बहुत दूर रख दूर खड़ी हो गई, दृष्टि टांग करके और कुछ संगमित कुछ क्रोध सा प्रकाश करती हुई और इस प्रकार से देखने लगी, मानो बाण चलाकर तो उसे आघात कर देंगे, इस प्रकार से देखने लगी। उसी समय में वो कारण है जब कृष्ण जी वहीं पर मुस्कुराते हुए उन आसनों पर बैठे हुए हैं, वो कैसे बैठे हैं, चकाश गोपी परिषद गो गोपियां कितनी भाव वाली, लाखों भाव वाली गोपियां सब चारों तरफ से उनको घेर करके बैठी, कोई तिलक भी कर रही, कोई हंसी कर रही है, तो इसी प्रकार से कर रही है, कोई मान कर रही है। और उसमें कृष्णचंद्र जी कुछ लज्जित होकर के कुछ लज्जित किंतु लज्जा होने पर भी मुस्कुराहट है। ये सब भाव की किंचित इत्यादि कितने प्रकार के नाम है, पृथ्वी को भी ये कुछ कुछ भाव, भीतर में कुछ और भाव, ऊपर में कुछ और भाव, इधर कुछ लज्जित हो रहे हैं, उधर भी मुस्कुरा भी रहे हैं, कुछ सिर नीचा है, कभी 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 तिरछी नजर से इधर उधर देख ले, उसमें कृष्ण का कैसा अद्भुत रूप होगा। उसी के लिए कहते हैं कि त्रैलोक्य लक्ष्मिक बपुर बपुर तथा त्रैलोक्य का जो सबसे सुंदर रूप है लक्ष्मी तो भी उसको उन्होंने धारण कर दिया। ऐसा मनमत 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 माने कामदेव जो समस्त जगत के, यहाँ तक कि शंकर ब्रह्मा इंद्र भिंद कुबेर किसी को नहीं छोड़ा, नारद जैसे जो भी और भक्त को भी नहीं छोड़ा, उनको भी अंगुलियों पर नचा दिया इशारों पर, वह कामदेव यहाँ पर उसको भी मोहित करने वाला रूप, ऐसा मनमत को भी मनमत को धारण करके और वहां पर जो किया ऐसा सुंदर। यहाँ पर परिषद माने कौन, गोपियों के रहने से कृष्ण का ऐसा रूप प्रकाशित हुआ, या कोई मायावादी अद्वैतवादी होता अथवा साधारण भक्त प्रहलाद भी रहते उनके सामने नृसिंह रूप में प्रकट होगा, कोई साधारण होगा तो उनके सामने चतुर्भुज रूप ध्रुव जी को क्या दर्शन दिया। इसलिए ध्रुव जी के उपास्य और इन गोपियों के उपास्य एक होंगे, इसलिए ऐसा रूप धारण किया। अब ये कह रहे हैं जरा कृष्ण के रूप के तरफ में देखिए, भगे जा रहे हैं, आंसू भी लुढ़क रहे हैं, कुछ डरते पीछे पीछे भी देखते चले जा रहे हैं, मैया मुझे मत मार, मुझे मत मार, ऐसा कहते हुए क्यों ऐसा। अरे जिनके एक नाम से जम का भी सब कुछ दर्द दूर हो जाता है, जम भी जिनके निकट नहीं पहुंच सकते हैं, आज यशोदा मैया के दर से ये चले, क्या उन्होंने किया था उसका वर्णन हम लोग कल का, अभी हम लोग 5-7 मिनट